सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्मानां
जो वन धन गुमान कहा करे जय। पहले सत्य को ले लो, हमने पहले सोच को ले लिया, कोई घबराने की बात नहीं है। अपन को अर्थ तो पूरे करना पड़ेंगे, इसको पहले करो उसको बाद में करो, है ना। उत्तम शौच सर्व जग जाना,
उत्तम शौच सर्व जग जाना,
लोभ पाप को पाप बखाना,
लोभ पाप को
आशा पास महादुख दानी,
आशा पास महादुख दानी,
सुख पावे संतोषी प्राणी,
सुख पावे संतोषी प्राणी,
प्राणी सदा सुचिशील जप तप ज्ञान ध्यान प्रभावते, नित गंग जमुन समुद्र न्याये अशुचि दोष सुहावते, ऊपर गमल मल भयो भीतर कौन विधिगत सुचि कहे, बहुदेह मैली सुगुण तैली शौच गुण साधु लहे, इसका अर्थ अपन को करना था। दो तरह से दस धर्मों का वर्णन किया ना। असल में हम लोग जो दस धर्म प्रतिक्रमण में पढ़ते हैं तो उसमें तो उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तपस्याग किंचन ब्रह्मचर्याणी दस लाक्षणिको धर्मा, प्रतिक्रमण में भी यही है और उधर तत्कार सूत्र जी में सूत्र में भी यही क्रम है। पूजा में अवश्य जो है पहले सत्य धर्म आता है और फिर शौच धर्म, इसमें कोई विशेष वो नहीं है। वैसे चारों कषायों की अपेक्षा से लोभ कषाय के अभाव में शौच धर्म, जैसे क्रोध के अभाव में क्षमा, मान के अभाव में मार्दव और माया के अभाव में रिजुता आर्जव धर्म, और अब लोभ के अभाव में और शौच धर्म। शौच का अर्थ है पवित्रता। कल हमने जो एक अर्थ किया था वो एक अर्थ तो प्रचलित है, एक अर्थ और निकल सकता है, कपट न कीजिए कोई चोरन के पुर नाम से। भाई छल कपट नहीं करना चाहिए, छल कपट से दूसरे की संपत्ति हरण भी कर लोगे तो आप भले ने मानव जाओगे, क्योंकि चोरन के पुर ना बसे। जो चोर होते हैं उनके आसपास कोई भी रहना अपना घर बनाना नहीं चाहे, एक अर्थ ये भी, चोरन के पुर ना बसे, जहां चोरों के घर हो वहां पर कौन बसना चाहे, एक अर्थ ये भी। और दूसरा अर्थ ये है कि जो छल कपट करके धन संपदा जोड़ता है सो कछु महल नहीं बनवा सकता, वो ने वो पुर अर्थात बहुत बड़ा कभी आज तक जो है चोरों का एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना हो ऐसा भी देखने में नहीं आता। ये भी अर्थ इसमें से निकाल सकते हैं अपन। अब चौथा जो है शौच धर्म अपन पढ़ें, क्या कह रहे हैं कि धरी हृदय संतोष करहु तपस्या देह। शौच धर्म की महिमा बताते हुए कह रहे हैं कि हृदय में संतोष धारण करना चाहिए। दो चीजें हो गई, अब हृदय में तो संतोष धारण करना तो शरीर से क्या करें फिर, तो कहते शरीर से तपस्या करो। एक तो हम भावनात्मक रूप से कुछ करते हैं और दूसरा हम शारीरिक रूप से कुछ करते हैं। वाणी को भी अपन शरीर की क्रिया में ही ले रहे हैं अभी, हालांकि मन वचन और काय तीन कहे गए हैं पर यहां पर दो में ही उनको डिवाइड कर दिया, मन और वाणी और शरीर को एक तरफ ले लिया है। तो मन में या कि हृदय में तो संतोष धारण करना चाहिए और शरीर से तपस्या करनी चाहिए। पहले कह देते कि शरीर से तपस्या करनी चाहिए और मन में संतोष धारण करना चाहिए, तो दूसरा अर्थ निकल आता कि थोड़ी तपस्या में भी संतोष कर लेना चाहिए। हाँ, कितनी होशियारी से लाइन लिखी गई। और दूसरा और अर्थ है कि शरीर से तपस्या तो बहुत लोग कर लेते हैं लेकिन मन में असंतोष बहुत बना रहता है, सो उनकी तपस्या कोई काम की नहीं। तो कहते पहले धरी हृदय संतोष, पहले हृदय में संतोष धारण करना फिर शरीर से तपस्या करना, नहीं तो आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करण छी। सो आप शरीर से तपस्या भी करने लगो और मन में असंतोष का भाव है, मन में हाव हाव है संसार की सब चीजें मिल जावे तो तपस्या के फलस्वरूप भी वो ही मांगोगे। फिर जब तक इत्यादि जो भी करेंगे शरीर से उसका फल मुझे और अच्छा सुख सुविधा का सामान मिले, भौतिक सुख मिले, क्योंकि असंतोष मन में है तो यही चीजें मांगेंगे। तो पहले कह दिया कि हृदय में तो संतोष धारण करना और शरीर से जितनी बने उतनी तपस्या करना। शौच सदा निर्दोष, क्योंकि निर्दोषता ही शौच धर्म है। जितनी जितनी परिणामों में से कलुषता चली जावे, जितनी जितनी पवित्रता आती जावे उतना उतना शौच धर्म है, या जितना निर्दोष बना है उतना ही शौच धर्म है। धर्म बड़ो संसार में, यह शौच धर्म संसार में बहुत बड़ा है, क्योंकि संतोषी व्यक्ति को ज्यादा गुस्सा नहीं आता, संतोषी व्यक्ति को अहंकार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती ज्यादा, संतोषी व्यक्ति छल कपट का वास से करे कौन बात की जरूरत है। असंतोष है सो असंतोष है सो फिर छल कपट भी करने का मन होता है, असंतोष है अपने आप जीवन से तो हमें मान सम्मान मिलना चाहिए, असंतुष्ट व्यक्ति को मान सम्मान बहुत चाहिए, असंतुष्ट व्यक्ति को क्रोध बहुत जल्दी आ जाता। तो देखो इसलिए कहना पड़ा कि ये शौच धर्म बड़ा है, तो कबाकी के सब तीन जो कह के आए वे छोटे हैं, तो मैं बुद्धू क्यों बनाती है? आप पहले जो ही कहती थी कि जो ये सबसे बड़ो, कहती नहीं, हमारे कहने का आशय है कि हैं तो सभी, एक के आने से सब आएंगे, लेकिन विशेषता की दृष्टि से देखें तो अगर संतोष आ जावे तो बाकी सब चीजें आसानी से सध जाती हैं। हालांकि उनको भी साधने में तपस्या तो करनी पड़ती है। क्या अर्थ हुआ? हृदय में संतोष धारण करना, ये भी शौच धर्म है, और शरीर से तपस्या करना, ये भी शौच धर्म है। जितनी जितनी कलुषता हटती जाए, जितना निर्दोषपना और पवित्रता आती जाए, वही सबसे बड़ा धर्म संसार में कहा गया। अब कह रहे उत्तम शौच सर्व जग जाना, सब लोग जानते हैं इस पवित्रता के धर्म को, लोभ पाप को बाप। अगर पापों का जनक, पापों की उत्पत्ति करने वाला कोई है तो वो लोभ है। लोभ से ही सारे तार जुड़े हुए रहते हैं। पांचों पाप एकमात्र लोभ से ही संचालित हैं। लोभ मन में जागृत हो गया तो अब चोरी करना पड़े, झूठी बोलना पड़े, हिंसा करना पड़े, जो करना पड़े वो करूंगा, मुझे तो वो चीज मिलनी चाहिए। इसलिए लोभ जो है वो सब पापों को उत्पन्न करने वाला है। आशा पास महादुखदायी, और आशा का बंधन, पाश यानी बंधन, उसकी ग्रिप। हमें लगता है कि हम आशान्वित हैं चीजों की प्राप्ति के लिए, लेकिन हम भूल जाते हैं हमारा, जब हम एटीट्यूड की चर्चा करेंगे तो यही कहेंगे कि हमें हमेशा हर चीज के लिए आशान्वित होना चाहिए। लेकिन यहां पर जो सांसारिक आकांक्षाएं हैं, जो संसार में वस्तुओं के प्राप्त करने की इच्छा, और फिर वे मुझे प्राप्त हो जाएंगी इस तरह की आशा, और प्राप्त हो जाने पर मेरे से छूट ना जाए इस बात की तृष्णा, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज है। इच्छा, आशा और तृष्णा। इच्छा उत्पन्न होती है, आशा हमें संभाले रहती कि मिलेगा, धैर्य रखो मिलेगा, अब लटके रहो, मिलना है, लेकिन आशा बांधे रखती हमें, और फिर थोड़ा सा मिलता है तो तृष्णा और बढ़ती चली जाती है। तृष्णा का मतलब है कि जो चीज प्राप्त हुई है अब वो हमसे अलग नहीं हो गए, ये कहलाती तृष्णा। और की इच्छा होना तो तृष्णा है ही, लेकिन जो प्राप्त है वो मेरे, उसका अभाव ना हो जावे, ये भारी तृष्णा। अरे चीजें हैं, उपयोग में ले लो, खत्म। अब जो खत्म नहीं हो जाए तो नहीं हो जाए तो रखें रहो। रसगुल्ला अच्छो लगा तो, एक पंडित जी थे जो कहते रसगुल्ला अच्छो लगा तो खा का खराब कर दी थी घर में रहे रहो। अच्छो लगा रसगुल्ला, अच्छी चीज है तो रखे रहो। तो ये तृष्णा कहलाएगी कि अगर हम चीजों का उपयोग ना करके, उन्हें संचित करके, उनका अभाव ना हो जाए, ऐसा भाव रखेंगे तो वो और अधिक हमारे लिए अत्यंत तीव्र लोभ का नाम ही तृष्णा। यहां कह रहे कि आशा बंधन है जो कि बहुत दुख देने वाला है। सुख पावे संतोषी प्राणी, और जिसको संतोष है उसके लिए ही सुख है। ऐसे कई उदाहरण अपन अपने जीवन में, अच्छा देखो, पहले जब घर में कार नहीं थी मान लो, तो मन में इच्छा होती थी कि कार आ जावे, बड़ा आराम रहेगा, है? और फिर बाद में अब कार आ गई, वो गैरेज तो है नहीं, अब बाहर रखने हैं, तो अब गैरेज कब बनेगा? और जब तक बाहर रखी है तब ऊपर ढांकवे को कवर बनवा लो, नहीं तो को उठा ले जाए 3 दफे ऊपर से, रात में जग के ढूंढ के देख ले कि धरी है कि नहीं धरी है। अब जी उसने सुख पहुंचाया कि और ज्यादा दुख, और भी लड़का बच्चा खेल रहे हैं, देखो वो पे कछु चाबी आवी से और खरोंच रोच ने लगा दी, बहन सावधानी रखो। जीवन में कितनी भी खरोंच लगती जावे इसकी चिंता नहीं है, मेरे सामान में खरोंच नहीं लगना चाहिए। जीवन कितने गंदा होता जावे, मेरी गाड़ी सुबह से मैं धोऊंगा, साफ सुथरी बना के रखूंगा, पोंछा लगा करके फिर जाऊंगा। पहले के लोग इस तरह का परिग्रह नहीं रखते थे, घोड़ा रखना पसंद है स्कूटर की अपेक्षा, क्योंकि घोड़े पे हाथ फेरने में मन में करुणा और दया और प्रेम का भाव मरता है, गाड़ी पे हाथ फेरने में तो सिर्फ तृष्णा उपजती है। कोई प्रेम भाव, कोई दया का और करुणा का भाव नहीं आता। ये बहुत बड़ा डिफरेंस, ये एकदम सहसा समझ में आने वाली चीज नहीं है। पहले जो जीवित व्यक्ति थे उनको पाल पोस के रखा जाता था, जो निर्जीव और जड़ वस्तुओं का संग्रह करने की प्रवृत्ति नहीं, इसलिए दोष कम था। और आज वर्तमान में दोष इससे अधिक होता है, अपन ये अनुभव करते हैं। कहते सुख तो जिस संतोषी है उसी के लिए है, प्राणी सदा शुचि। और शौच का अर्थ जो है पवित्रता से है। सुपवित्रता दो प्रकार की है, एक बाह्य पवित्रता और एक अंतरंग की पवित्रता। बाह्य पवित्रता तो जल इत्यादि से और प्राप्त हो जाती है, स्नान से प्राप्त हो जाती है, लेकिन अंतरंग की पवित्रता का उपाय भी करना चाहिए। दोनों प्रकार की शुचिता या दोनों प्रकार की पवित्रता हमें हासिल करनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? प्राणी सदा शुचि जी, सील जप तप ज्ञान ध्यान प्रभाव थे। किस किस चीज के प्रभाव से प्राणी निर्मल होता है, पवित्र होता? तो कहते सदा ब्रह्मचारी सदा शुचि, जो ब्रह्मचरी की साधना करता है उसको फिर स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो हमेशा निर्मल ही है। जिसका चित्त निर्मल है सो वो सदा काल निर्मल है। वो ही कह रहे हैं यहां कि प्राणी सदा शुचि, हमेशा पवित्रता बनी रहती काहे से, शील अपने स्वभाव में रहने से, पांच इंद्रियों के विषयों में न जाने से, जब पंच परमेश्वरी का स्मरण चिंतन मनन करने से, चिंतन मनन स्मरण का नाम ही जप है, और तप विभिन्न प्रकार से और अपने अंतरंग को और बहिरंग से भी और अपनी इच्छाओं को रोक लेने का नाम तप है, और ज्ञान ध्यान आत्मा और शरीर को अलग अलग मानना ये ज्ञान है। और ध्यान क्या चीज है? अपने पंच परमेश्वरी में अपने मन को लगाए रखना, या जो हमारी शुद्ध विशुद्ध सिद्ध अवस्था है उसका हमेशा स्मरण बनाए रखना, यही ध्यान है। इस तरह ये सारी चीजें हमारे लिए पवित्र बनाती हैं और सदा काल पवित्र बनाए रखती हैं। शरीर का तो ये है कि अब एक घंटा भर पहले पहुंचा था, अब वो फिर ज्यों को दें है? थोड़ी धूप निकल जावे पसीना आ गया और हवा चल गई धूरा हो गई, अब फिर पहुंच हो रही। और एक बार मन को पहुंच लो, उसमें क्रोध ने आने दो, उसमें मान और अहंकार ने आने दो, तो हमेशा शुद्ध है। ये कहना चाह रहे नित गंग जमुन समुद्र नहावे, रोज जो है गंगा जमुना ये नदियां हैं और बड़े बड़े समुद्र हैं, इनमें भी नहा लो तो भी देह स्वभाव से ही अपवित्र है, सुपवित्र न होगी, अशुचि दोष स्वभाव है। अरे जिसको नहला रहे हो उसका स्वभाव तो देखो, उसका स्वभाव तो अपवित्रता ही है, और तुम उसको नहला धुला करके अपवित्र बनाना चाह रहे हो। सो ठीक है, स्वच्छता रखना अलग बात है और पवित्र बनाने की चेष्टा करना अलग बात है। शरीर को स्वच्छ बनाया जा सकता, पवित्र नहीं बनाया जा सकता। सैनिटेशन और प्योरिटी में बहुत फर्क है, ये तो हमेशा इम्प्योर ही है। इतना जरूर है कि इसके ऊपर का कचरा हटा देते हैं तो सैनिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी स्वच्छ नजर आने लगती है, पर पवित्र तो फिर भी नहीं है। ये विचार करना कि मैं इसे पवित्र क्या बनाऊं, पवित्र तो मेरा हृदय होना चाहिए, इसको सिर्फ साफ सुथरा रखूं, स्वच्छ भर बनाऊं, इसकी पवित्रता का मैं उपाय ना करूं। अगर पवित्र करना ही है तो आगे कह रहे ऊपर अमल मल भरो भीतर। ऊपर से तो आपने धूप पहुंच ली लेकिन भीतर तो वही कचरा भरा हुआ है। अपन अपने शरीर को ही उघाड़ करके नहीं देख सकते, अगर अपने भीतर जो जो कुछ है और कोई उसको दिखाना चाहे अपने आप को, तो अपने शरीर से अपने को घृणा हो जाए। कौन विधि घट सूचि कहे, इसलिए इस घट अर्थात इस शरीर को कौन होगा बुद्धिमान जो कि पवित्र कहेगा। बहुदेह मैली सुगुण थे, लेकिन एक बात है ये कितने भी मैली क्यों ना हो लेकिन इसके अंदर आत्मा में अगर गुण है तो ये गुणों का भंडार भी है। ये थैली अर्थात भंडार, ये शरीर जो है गुणों की थैली भी है, गुणों का भंडार भी है। अगर आत्मा अपने गुणों को विकसित कर ले तो इसी शरीर में रह करके भी सोच गुण साधु रहे, इसलिए हमेशा जो सज्जन पुरुष हैं या साधु जन हैं वे अपने गुणों को बढ़ाने में लगे रहते हैं, अपने हृदय को पवित्र बनाने में लगे रहते हैं। देह के लिए पवित्र बनाया नहीं जा सकता है, इसलिए उसे साफ सुथरा कर रखना उसकी पवित्रता का उपाय, ये जैसा हम करते हैं नहलाने धुलाने का वो उपाय नहीं है। देह की पवित्रता का उपाय करना चाहो तो एक ही है कि हम देह से तपस्या करें। जितनी तपस्या करेंगे देह से, देह उतनी ही पवित्र होगी। रत्नत्रय पवित्र देह, देह स्वभाव से अपावन है लेकिन रत्नत्रय के कारण पवित्र हो जाती, पूज्य हो जाती। देखो आचार्य उपाध्याय साधु जनों की देह की भी अपन पूजा करते हैं। यही शांत राग रुचि भी परमाणु विस्तुम निर्मापित नैकललाम भूत तावंत एव करुते प्रणवा प्रतिव्याम यत्ते समानम अपरम रूपम नहीं अस्ति। इसीलिए तो आपके समान किसी का रूप नहीं है। बताओ भगवान के बाहरी रूप की प्रशंसा कर रहे, देह की प्रशंसा कर रहे कि आप अत्यंत सुंदर देह को धारण करने वाले, क्यों कर रहे देह की प्रशंसा? क्योंकि उस देह में बैठी हुई आत्मा ने अपने आप को सुंदर बना दिया, इसलिए उसके साथ साथ उस देह की भी प्रशंसा अपन करते हैं। तो देह की पवित्रता के लिए तो देह से तपस्या करना और हृदय में संतोष धारण करना, या कि गुणों को धारण करना, रत्नत्रय को धारण करना, ये इसका उपाय है। आज अपन प्रश्न है, क्या यह संभव है कि एक बार आपके मुख से महावीर अष्टक स्तोत्र और वीतराग स्तोत्र सुनने को मिले? अरे रोज संभव है, बस आपको थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा। शाम की अंतहु जरा जल्दी करना पड़ेगी, 6:25 पे खत्म कर लो और आ जाओ। आज ही आ जाओ, आज ही कर लेते हैं, दो में से एक तो आज ही कर लेंगे। आप जो कहोगे तो मैं से करवा देंगे, महावीर अष्टक कहो तो वीतराग स्तोत्र कहो, और आप अगर और पहले आ जाओगे तो दोनों करवा देंगे, हमें क्या उसमें। उसके बाद फिर हम दोहराएंगे, ये भी हम करवा देंगे, उसके बाद आप दोहराइए हम बोलेंगे। हम उसको टेप करके खुद भी लाभान्वित होंगे, ठीक है? आप पहले से, आप तो वीडियो कैसेट बना दो, हम उसके लिए मना नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ताकि हम और लोगों को दे सकें, बहुत अच्छा है। सब देखो, इतना कोई मंजूर हो सकता है किसी की बात पर? सब सब में राजी हुए 100%, एक भी नहीं छोड़ा उसमें से हमने। इस समय तो थोड़ा आप मैंने फिर ये नहीं कर पाएंगे अपन, जो अपन अभी किया है वो ना होके फिर ये एक बार अपन महावीर अष्टक पहले करवा चुके, हम उसका अर्थ सहित करवा चुके, पर शाम के क्रम में रोज ही करते हैं महावीर, कभी महावीर अष्टक करते हैं, कभी वीतराग स्तोत्र करते हैं, उसी समय अपन इसको करने तो अच्छा रहेगा। या फिर ऐसा करो कि आप 25 घंटा को दिन बना लो, हमें मतलब तो थोड़ी आसानी, अब 24 ही तो घंटे हैं और उसमें जो है कितनी कितनी चीजें करेंगे, तो सब तो नहीं संभव। महाराज कल की पुस्तक और पता बताने, कृपया कल की पुस्तक और पता बताने की कृपा करें। मतलब हाँ वो वाली, अरे वो भाव त्रयी, भाव फल त्रयी ऐसा नाम है उसका। वो हम आपको उसका एड्रेस तो मुझे तो बॉम्बे से बोरीवली से और भूतबली जी महाराज ने भेजी थी मुझे, उन्होंने वहां प्रिंट कराई, वो उसका और एड्रेस है। आप बोरीवली से तो हाँ वहां से पता लग सकता है, मिल सकते। शाम के समय त्याग करने के बाद अगर रात में उल्टी हो जाए तो क्या प्राश्चित देना चाहिए? मौन हो जाना सबसे श्रेष्ठ है कि अब मेरे लिए हमने पूरा जो भी वो त्याग कर दिया जल का, तो अब हमें उल्टी हो गई तो मुंह तो प्रक्षालन होगा नहीं, तो अब बोलें कैसे, इसलिए चुप, जब तक कुल्ला नहीं कर लेंगे जब तक का मौन, ये हो गई। अगर ये साधना नहीं हो सके, किसी को बहुत बेचैनी हो जाए, तो फिर कहते कि मुख प्रक्षालन कर लो और नमोकार की जाप कर लेना, क्योंकि मुख प्रक्षालन करना पड़ा। दोनों प्रक्रिया में से जो आपको अच्छा लगे, बस इतना ही करना कि संकलेश न करना, और चाहे जो करो मुंह धो लो लेकिन संकलेश न करो, नहीं तो मुंह भी नहीं धोया और संकलेश भी किया तो दो ही दिन से गए थे इसलिए इतना कर लेना चाहिए। शांतिनाथ भगवान की, आचार्य की, महाराज की, संघ की, अहिंसा धर्म की, इन सब की इसमें इन्होंने जय लिखी है। ठीक है, बहुत अच्छा है। इन सब की जय को करने का कारण क्या है? ताकि इनके माध्यम से हम भी अपने इंद्रिय और मन को जीत सकें। जब जब भी हम जीतने वालों की जय करते हैं तो भावना क्या भानी चाहिए? मंदिर में प्रवेश करते ही साथ पहले कहते हैं कि ओम जय जय जय। किसकी? ओम मतलब पांचों पर पंच मर्मेष्ठ की जय हो। मैं आया काय के लिए हूं? अपने इंद्रिय मन को जीतने के लिए। किसके पास आया हूं? जिन्होंने अपने इंद्रिय मन को जीत लिया या जीतने में लगे हूं। तो जयकार भी जो है वो अपने आप में और हमें एक चैलेंज देता है कि आए हो तो फिर अब अपनी विजय करके लौटना। खाद्य पदार्थों के मर्यादा काल संबंधी नियम क्या है? मर्यादा का पालन न हो पाए तो अनुव्रत ग्रहण करना उचित है कि नहीं है? अगर दो प्रतिमा या एक प्रतिमा धारण करने रूप जो पांच अनुव्रत हैं, वो अगर प्रतिमा कोई लेवे तो फिर उसको मर्यादा का भोजन करना आवश्यक है। लेकिन जिसने सामान्य रूप से पाक्षिक श्रावक की अपेक्षा से और पांच अनुव्रत ग्रहण किए हैं और तीन मकार का त्याग किया, ऐसे आठ मूल गुण जिसने धारण किए हैं, उसको अभी मर्यादा के भोजन की बात नहीं आती। जब वो ये संकल्प कर लेवे कि जीवन भर के लिए और मैं और पहली प्रतिमा निर्दोष रूप से पालन करूंगा, तब फिर उसके लिए ये चीजें शामिल हो पाएंगी। इसलिए अनुव्रत वाले को मर्यादा का पालन करना अनिवार्य नहीं है। 12 व्रतों को जब ग्रहण करेंगे, अनुव्रत के साथ में 7 सील व्रत और ग्रहण करेंगे, तब फिर मर्यादा का पालन अनिवार्य हो जाएगा। पर इतना जरूर है कि खाद्य पदार्थों की मर्यादा तो सामान्य गृहस्थ को भी रखना चाहिए है? अपनी गृहस्थी में और कम से कम पाप हो इस बात का ध्यान रखे तो यही तो कहलाएगा अहिंसा धर्म के प्रति रुचि। अब हमारे लिए बारिश में मालूम है कि चीजें जल्दी खराब होती हैं, तो ज्यादा दिन की क्यों रखो? आटा पीस कर क्यों? अब तो भैया ऐसा है कि बटन दबाने और लियो चक्की में जो है डाला और बाहर निकल आया, 10 मिनट में पीस पास करके बाहर आ गया। सो जब चाहे पीस लो, मगर अपन और जोड़ जोड़ करके रखते हैं, 3 दिन की जगह पर 10 दिन का रखा रहेगा तो उसमें जीव राशि उत्पन्न होगी। जो मर्यादा है उसके मायने हैं कि उतने समय तक तो जीव राशि उत्पन्न नहीं होगी, या होगी तो अल्प होगी, उसके बाद तो फिर उसमें त्रस राशि उत्पन्न होने लगेगी। स्थावर जीवों के अलावा और त्रस जीव भी जब उत्पन्न होने लगते तो मांस का दोष आ जाता है, इसलिए अपन उसका त्याग करें। 2 इंद्री से मांस का दोष आता है, देखो रस रुधिर मांस, ये क्रम क्रम से 7 धातुएं हैं। तो पहले जो एक इंद्री जीव है उनमें मात्र 7 धातु में से एकमात्र रस धातु है, अभी उनके मांस मज्जा मेधा इत्यादि नहीं आया, वो 2 इंद्री से आना शुरू। तो अपन जो भी मर्यादा बनाते हैं उसका उद्देश्य यह है कि उसमें 2 इंद्री जीव या 3 इंद्री जीव उत्पन्न होने लगे, इससे पहले ही अपन ने उसको छोड़ दिया सभी चीजों में, चाहे वो माने ये हो आटा हो या और भी जो खाद्य पदार्थ हैं, उन सब में ये सावधानी सामान्य व्यक्ति को भी रखनी चाहिए। अनुवृत्ति तो रखेगा। क्या यह संभव है कि गृहस्थ अवस्था में अगर 2 जीवन नष्ट हो रहे हो, अलग अलग हो रहे हो, तो मुनिराज उन्हें सही दिशा प्रदान कर सकते हैं? जी कल इन्होंने हमसे कल भी पूछा था, मतलब जैनेन्द्र कुमार ने लिखा कि 2 लोग अलग अलग हो गए, इसमें क्या आश्चर्य है? आश्चर्य तो इसमें है कि 2 लोग इतने दिन तक एक संग कैसे रह गए। और फिर कहते नहीं समझ में आई हो तो आगे की लाइन कहते कि 2 अगर 2 हो करके रहेंगे तो रह नहीं है मात्र साथ में, वास्तव में तो 2 अगर 1 होके रह रहे हैं तो फिर अलग अलग होने का सवाल ही नहीं उठता। ये उनकी अपनी भाषा है, हमें इससे क्या उपदेश लेना चाहिए कि भाई गृहस्थ अवस्था में 2 जीवन 2 पहियों की तरह हैं और जिन पर की गृहस्थी की गाड़ी चलती है, और दोनों को बहुत सावधानी पूर्वक अब अपना जीवन जीना चाहिए। थोड़ी बहुत कभी कभी एक पहिया अटक जाता है, उसमें थोड़ा ओंगन देना पड़ता है। ओंगन का मतलब क्या होता है? चिकनाहट। अब उसमें रफ और टफनेस आ गई तो थोड़ी चिकनाहट डालो, दूसरे को मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी चिकनाहट लगाओ। स्नेह, स्नेह, स्नेहन जिसको कहते हैं, स्नेह से तो सारी चीज आसान हो जाती है। वो स्नेह कम हो गया तो अड़ने लगा। इतना सीधा सीधा सा है गृहस्थी में। देखो गृहस्थी ने करके फिर गृहस्थी के बारे में देखो तो सही सही मालूम पड़ा, तो गृहस्थी कर ली तो फिर नहीं मालूम पड़ा, फिर तो सब गड़बड़ मालूम पड़ने लगे। दूर से देखो कि क्या क्या घटित होता है तो फिर सावधानी पूर्वक। अपन लोग तो हड़बड़ी में विवाह कर लेते, विचार थोड़ों करते। मुनि बनने के लिए भारी विचार करते, व्रत इत्यादि लेने के लिए बहुत विचार। अरे गृहस्थी बनाने के लिए पहले हम तो कहते ज्यादा कठिन है, बहुत विचार कर लो कि अबे तो अकेले अकेले हो, फिर दो जने और दोनों एक जैसे चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे, मन मिलेंगे कि नहीं। सगे भाइयों के तो मन नहीं मिलते, और एक उस घर से दूसरे घर से आई और ये दूसरे घर का बेटा, मन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आसान काम थोड़ी है आदर्श गृहस्थी बनाना, ये आसान नहीं है। आज वर्तमान में भी बहुत दुर्लभ है इस तरह की प्रक्रिया, और नहीं है अपनी गुंजाइश तो काय को बिगाड़ लो, फिर ब्याह इत्यादि करो, फिर ब्याह करो, फिर लड़ो, रहने होते ही है संगे। अब रहने तो सहो भी, इसलिए तो रहन सहन शब्द बना कि जिसके साथ रहना उसके साथ सहना सीखो, नहीं तो नहीं रहो। संगे रहवे की तय क्यों करी, जीवन भर रहवे की तय करी और सहन नहीं कर रहे तो हम ही हम करें कर। तो हम ही हम करें ऐसा नहीं, ऐसा दोनों सोच लेंगे कि हम ही हम करें, नहीं दोनों ही सहन करें। और एक तो कोई झगड़ा नहीं होता, अब इससे ज्यादा और क्या समझाएंगे हम। आप कह रहे हैं कि शिक्षा हमेशा कहते हैं कि जिसकी गृहस्थी अच्छी है वो ही धर्म ध्यान कर सकता है, जिसका गृहस्थ जीवन ठीक नहीं है उसके जीवन में घंटा भर का धर्म ध्यान है, 23 घंटा संकलेश है और कुछ नहीं है जीवन। वो दिखावटी धर्म ध्यान है, घंटे भर का जो पूजा प्रक्षाल करके घर गए और भाई किलकिल शुरू हो गई। किलकिल नहीं कह आप समझते, किलकिल शब्द बुंदेलखंडी शब्द है, है? किलकिल। इसका उच्चारण रात के समय अच्छा ये सही रत्नगण शापकाचार एक ही भाव कल्याण मंदिर भक्ता में, इनका उच्चारण रात के समय 9 बजे तक कर सकते कि नहीं? उत्तरद्वार सूत्र का पाठ करने का क्या समय है बता दें। सिद्धांत ग्रंथ इसमें से कोई भी नहीं है, ये नोट कर लें। रत्नगण शापकाचार एक ही भाव कल्याण मंदिर भक्तांबर और उत्तरद्वार सूत्र इन पांचों में से कोई भी सिद्धांत ग्रंथ नहीं है। सिद्धांत ग्रंथ षटखंड आगम और उसकी टीकाएं उपटीकाएं यानी धबला जी, जय धवल और महाधवल, ये 40 वॉल्यूम जो है वो है सिद्धांत ग्रंथ। इनके पढ़ने का नियम है कि सामायिक के समय पर नहीं पढ़ना, सामायिक का सुबह दोपहर शाम का समय है, उसके अलावा अन्य समयों में पढ़ा जा सकता। लेकिन ये जो चीजें हैं रत्नगण शापकाचार एक ही भाव कल्याण मंदिर, इनके लिए ये रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। इनको तो आपको जब पढ़ना तब पढ़ लो, क्या हर जब चाहे स्तुति तो जब चाहे पढ़ी जा सकती है। संध्या काल में कुछ मन नहीं लग रहा, जाप देने मन नहीं लग रहा, पाठ करो, भक्तांबर पढ़ लो, तत्वार सूत्र पढ़ लो, लेकिन सिद्ध करने के चक्कर में पढ़ोगे तो फिर समय का ध्यान रखना पड़ेगा। जी झगड़ा इसलिए है कि भक्तांबर कब पढ़े, क्योंकि लाल रंग के कपड़े पहन के और माला ले करके और लौंग सामने रखें कि दिया जला के पढ़ने हैं, तब जी उपद्रव करने हैं तो समय को ध्यान रखने पड़े। और सीधे सीधे भगवान आदिनाथ की स्तुति करने हैं तो कछु नहीं है, चप चाहे कर लो जी। इसलिए प्रश्न उठ गया है कि कब करना चाहिए। इनके लिए अपन कोई सिद्ध थोड़ी करना चाह रहे हैं ये स्तोत्र इत्यादि, हम तो सिर्फ अपने आत्म कल्याण की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, भगवान की स्तुति है तो कोई आप वो नहीं है। 9 बजे तक 10 बजे तक आप आराम से इनको पढ़ सकते। रही बात तत्वार सूत्र की, तो तत्वार सूत्र के 10वें अध्याय का पाठ करने की आवश्यकता नहीं है रात में, किसी एक अध्याय का स्वाध्याय कर सकते, टीकाओं लगा सकते। हमने 9:30 बजे 9 से 9:30 बजे तक पंडित पन्नालाल जी थे सागर में, तो वो तत्काल सूत्र पढ़ाते थे। कभी कभी हम पहुंच जाते थे तो हमने देखा कि वो पढ़ाते उसको, ठीक स्वाध्याय चल रहा, पाठ नहीं, 10वां अध्याय पढ़ने का नहीं, स्वाध्याय, क्योंकि दसों अध्याय पढ़ने में तो वो एक तरह का अनुष्ठान हो गया और अनुष्ठान के लिए जितनी शुद्धि चाहिए वो समय नहीं बनता। वो तो नहा धो के सवेरे और बढ़िया शुद्ध कपड़े पहन करके करना चाहिए, तब वो तत्पार सूत्र के पाठ रूपी जो अनुष्ठान है। और वैसे सूत्र का विचार करना हो कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित प्राणी मोक्ष मार्ग, इसका अर्थ क्या है, देखूं जरा सर्वार्थ सिद्धि उठा के देखूं उसमें क्या कहते हैं पूज्यपाद स्वामी, थोड़ा तत्वार्थ काज वार्तिक में उठा करके देखूं अकलंक स्वामी महाराज क्या कहते हैं, श्लोक वार्तिक में उठा के देखूं विद्यानंदी महाराज और क्या डिटेल कर रहे हैं, ऐसा अगर स्वाध्याय कर रहे हैं तो कोई अर्जा नहीं। लेकिन आप पाठ करने बैठ गए तो वो एक अनुष्ठान दस अध्याय का, जिसमें लिखा कि फलम साधु वासस्य, हाँ वो अगर हम उसका इस तरह दस अध्याय पढ़ने का और पूरा नियम करके पढ़ते हैं तो फिर वो अनुष्ठान है, उसके लिए शुद्धि रखना। तो उसको अपन सुबह के टाइम में ही पढ़ेंगे, इस अपेक्षा से उसको आप करें। नवरात्रि में मंत्रों की विशेष शुद्धि की जाती, तो क्या कारण है, क्या इन नवरात्रों में मंत्र या उनके अधिष्ठाता देव विशेष फल देते हैं, इसके बारे में मेरा ज्ञान उतना नहीं है जो आप पूछना चाह रहे, इसलिए मैं कुछ नहीं बताता। क्या जैन दर्शन में भी मंत्रों का नवरात्रि में आराधन किया जाता है? जैन दर्शन में तो नवरात्रि नहीं, 365 रात्रि है जिनमें आपको जब मंत्र करना हो जब कर सकते हैं। उसमें कोई ये जो 10 धर्म हैं भी 10 लक्षण में ही करो चाहिए, ऐसा नहीं है कि 10 लक्षण आ गए सो उत्तम क्षमा मार दवा जो, नहीं 365 दिन करो आप तो 10 धर्म पर क्या करें, श्रावक के जीवन में और पूरा समय धर्म ध्यान में नहीं निकलता। तो अपन ने फिक्स कर लिए कि भाई इन दिनों में तो हम विशेष रूप से करेंगे ही, ऐसा ही इसमें भी है। पर अपने यहाँ पर मंत्रों के लिए इस तरह कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है, सिद्धि इत्यादि करने के लिए अपने यहाँ पर सलाह नहीं दी गई है। उसमें लिखा हुआ है कि मंत्रों की सिद्धि वही करें जिसने पांच इंद्री और मन पर विजय प्राप्त कर ली। तो जब हमने ये बात पढ़ी तो हमने कही फिर बुद्धू हुई है वो कि मंत्रों की सिद्धि करेगा, जिसने पांच इंद्री और मन को जीत लिया उसको तो सारे मंत्र सिद्ध हो गए। अब वो रेखा को सिद्ध करे विकलाने, यही तो बड़े सबसे बड़ी सिद्धि है। कटनी में हम थे तो एक बाबा जी आए और बहुत उनके चेहरे पर अच्छी चमक और बिल्कुल चांद थी बढ़िया से, तो जरा व्यक्तित्व भी अच्छा था, अच्छा शरीर भी था, बहुत आके बैठे वो, हमें आपसे चर्चा करनी, चर्चा की भाई ध्यान इत्यादि प्राणायाम की साधना की चर्चा करी, सब बातें हो गई। उनका प्राणायाम इतना परफेक्ट था कि उनने करके दिखा दिया, सांस का अवरोध कर सकते हैं वो कितनी कितनी देर तक के लिए ध्यान में लीन हो जाते। हमें भी थोड़ा सा एक क्षण को लगा कि वैसे ये चीजें बहुत अच्छी हैं, ज्ञानार्णों में प्राणायाम इत्यादि की चर्चा करी है, ये अच्छा है, उन्होंने अच्छा किया ठीक। पर इसके बाद भी अपने अंदर कोई खास इंप्रेशन नहीं आया, बस ये है कि इनकी उपलब्धियां हैं। डेढ़ घंटे तक वो हमारे पास में बैठे, सब प्रकार की चर्चा हुई, जैसे अपन बैठे ऐसे और भी लोग सब बैठे थे। वे कहने लगे कि आपसे एकांत में 5 मिनट बात करना चाहता है। मैंने कहा ठीक है, अब सबके बीच में कर लिया, आप एकांत में कर लो। हमने सोचा कुछ बात पूछेंगे विशेष। वे धीरे से हमसे पूछने लगे कि आप अपने 5 इंद्रिय और मन को कैसे जीतते हैं, ये तो हमसे होते ही नहीं, आप ऐसे सबके बीच बैठ रहे थे, आपके मन में कोई खोटा विचार नहीं आता। हमने मन ही मन अपने आप को पीठ थपथपाई, हमने की अपन अच्छे भैया प्राणायाम भले नहीं जाना मगर अपने गुरु जी का आशीर्वाद है। इस प्रकार बाह्य उपलब्धियां बहुत आसान हैं, सिद्धियां बहुत आसान हैं, लेकिन अपने इंद्रिय और मन को साध लेना, इससे बड़ा और क्या मंत्र की साधना हो सकती है। भैया जैन दर्शन तो ऐसी साधना के लिए ही हमें प्रेरित करता है, अगर हम मंत्र का उच्चारण भी करते हैं तो किस दृष्टि से, सफर कल्याण की भावना से, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए और टॉर्चर करने के लिए या अपनी विशेषता बताने के लिए, किसी उपलब्धि के लिए नहीं करते हैं। इसलिए इनका कोई विशेष अपने यहाँ पर अनंत नाम वाली कविता जो है वो सुना दीजिए, बहुत दिन बाद आए आप। मुगाऊ जी कब आ रहे हैं, जैसे झांसी के लोग कला कर कह रहे थे क्या झांसी कब आ रहे हैं, अब हमें ऐसा करना पड़ेगा कि एक वो बनानी पड़ेगी अपना टाइम टेबल, उस हिसाब से कि इतने से इतने समय तक यहाँ रहूँगा, इतने दिनों यहाँ आऊँगा, ऐसे अपॉइंटमेंट जैसा कि आपके यहाँ पर इन दिनों में रहूँगा मैं। लेकिन ऐसा संभव ही नहीं है, ये तो गुरु जी पर निर्भर है, वो जहाँ के लिए कहते हैं। आपकी अपनी भावना बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। नरकों में चार संज्ञाएं होती हैं, तो परिग्रह संज्ञा होती क्या? सारा झगड़ा उसी परिग्रह की वजह से ही है नरक में, मारी थारी मची रहती थी, मेरा ये तेरा। उसी बहुआरंभ परिग्रहत्म नारकशायुषा, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह की वजह से ही तो नरक जाते हैं, और वहां भी जो है एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाने में आनंद लेते रहते हैं, उनके अंदर आसक्ति बहुत होती है। वहां पर भले ही अपन क्या समझते हैं कि खूब सामान। मंगलम कुंद कुंदाप्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। महावीर भगवान की, आचार्य गुरु और विद्यासागर महिमा दुष्ट अनी बांध मार बहु विधि करें, धरी क्षमा विवेक कोप न कीजे प्रिय, उत्तम क्षमा गहो रे भाई, इह भव जस पर भव सुखदाई, गाली सुनि मन खेद नानु, गुण को अवगुण कहे अयानु, कहिए अयानो वस्तु चीने बांध मार बहु विधि करें, घर ते निकारे तन विदारे बैर जो न धरे, ते कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जियरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी साम्य जल ले सियरा, करहिं जगति जगत में कोमल सुधावनु, सुख पावे प्राणी सदा, उत्तम मार्ग गुण मन माना, मान करण को कौन ठिकाना, वस्यो निगोद माही ते आया,
भाग विकाया रूकन विकाया भाग बसते देव एक इंद्री भया उत्तम हुआ चांडाल हुआ भूप कीरों में गया तव्य जो वन धन गुमान कहा करे जल बुद बुदा करी विनय बहुजन बहुगुण बड़े जन की ज्ञान का पावे उदा कपट न कीजे को चोरन के पुरनावसे सरल सुभावी हो ताके घर बहु संपदा उत्तम आर्जो रीति बखानी रंचक दगा बहुत दुख दानी मन में वो सो वचन उचरिए वचन हो ये सो तन सो करिए करिए सरल क्यों जोग अपने देख निर्मल आरसी करे जैसा लखे तैसा कपट प्रीति अंगार सी नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी कर्म बंध विशेषता त्यागी दूध बिलाऊ पीवे आपदा नहीं देखता धरी हृदय संतोष करूं तपस्या देह सो शौच सदा निर्दो धर्म बड़ो संसार उत्तम शौच सर्व जग जाना लोभ पाप को बाप बखाना आशा पास महा दुख दानी सुख पावे संतोषी प्राणी सदा सुचिशील जप तप ज्ञान ज्ञान प्रभावते सदा सुचिशील जप तप ज्ञान नित गंग जमुन समुद्र न्याये अशुचि दोष स्वभाव के ऊपर गमल मल भयो भीतर कौन विधिगत सुचि कहे बहुदेह मैली सुगुण थैली शौच गुण साधु लगे कठिन वचन मत बोल पर निंदा रुझूत सांच जवाहर खोल सत्वादी जग में सुखी उत्तम सत्य व्रत पालीजे पर विश्वास घात नहीं कीजे सांचे झूठे मानुष देखो आपन पूत सपात न पेखो पेखो तिहायत पुरुष साचे को दरब सब दीजिए मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा सांच गुण लकड़ी सिंहासन बैठी वसुनृप धर्म का भूपति भया बच झूठ से ती नरक पहुंचा सुरग में नारद गया ये चार पन्ने चार कषायों के अभाव में चार धर्म प्रकट होते हैं ये समझ लिया क्रोध के अभाव में क्षमा धर्म मान कषाय के अभाव में मार्दव धर्म और माया कषाय के अभाव में विदुता नाम का धर्म आर्जव धर्म और लोभ कषाय के अभाव में शौच धर्म अब कह रहे हैं कि जिसके जीवन में कषायें जितनी कम होंगी वही व्यक्ति सच्चा हो सकता है इसलिए अब सत्य धर्म का वर्णन कर रहे हैं कहते कि सत्य धर्म सत्य भाषा समिति और सत्य महाव्रत और अनुव्रत इनको थोड़ा थोड़ा अपन को परिचय रहना चाहिए सज्जन पुरुषों के साथ जो वचन व्यवहार है उसको कहते सत्य धर्म दुर्जन सभी के साथ जो हितनीय हितमित और प्रिय वचन बोले जाते उसको कहते भाषा समिति झूठ वचन का त्याग मन वचन का कृत कार्य तन्मोदना से करने का नाम सत्य महाव्रत और स्थूल रूप से झूठ का त्याग करने का नाम सत्य अणुव्रत है ना और सब प्रकार के वचन का त्याग कर देने का नाम वचन गुप्ती ये हो गई पांच चीजें ये अपने को ध्यान में रखें सबसे ज्यादा कर्मों की निर्जरा किसमें होगी सब प्रकार के वचन का त्याग कर दिया फिर उसके बाद कहते हो सके तो कम से कम जीवन भर के लिए झूठ वचन का पूरी तरह त्याग कर देना मुनि बन जाएंगे उससे कम कहते हम तो अभी गृहस्थ हैं
तो कहती पर बधकार कठोर निंद नहीं वचन उचारे, आप तो इतने ही कर लो कि कठोर दूसरे का अहित करने वाले और निंदनीय वचन नहीं बोलना, ये आपका सत्य अनुव्रत हो गया। अब सत्य धर्म का पालन मुनि महाराज करते, तो कहते और भाषा समिति का पालन भी मुनि महाराज करते हैं दोनों का ही। तो कहते जब सामान्य व्यक्तियों से बात करो तो हित मित और प्रिय वचन बोलना, और जब सज्जन पुरुष हैं जो आपकी बात का ठीक अर्थ निकालेंगे उनसे फिर मित बोलने की नहीं, जो भी आप कहना चाहें वैसा कह सकते। अप्रिय भी आप बोल देंगे तब भी वे आपके भाव समझते हैं कि इनका भाव क्या है। इसलिए सत्य धर्म में हित मित और प्रिय, क्योंकि सत्य वचन बोलने वाला तो हितकारी बोलेगा और प्रिय ही बोलेगा, और टू द पॉइंट जितना आवश्यक उतना बोलेगा। इसलिए सत्य धर्म में श्रावक के लिए कठोर निंदनीय और अहितकारी वचन नहीं बोलने का कहा, और मुनिजनों के लिए सत्य धर्म अपने जो और साधर्मी हैं उनसे वचन व्यवहार करना सत्य धर्म। वो यहां कह रहे कि कठिन वचन मत भाई, कठिन वचन मतलब कठोर वचन मत बोल। और पर निंदा दूसरे की, जिन वचनों के द्वारा निंदा होती है उन वचनों को भी नहीं बोलो। अरु झूठ तक, और झूठे वचन तो बोलना नहीं चाहिए। झूठ किसे कहेंगे, जिससे हित हो, जिससे अहित होता हो वो सब झूठ। अपने हाथों सीधी मोटी परिभाषा है कि बेवचन जो दूसरे का अहित करें सब झूठ, कितव चाहे सत्य हो। सत्यमपि विपदे, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना जिससे दूसरे पर विपत्ति आ जाए, उसको भी अपने यहां पर झूठ की कोटी में डाल दिया। लेकिन इसको एकदम नहीं समझ पाओगे आप, ऐसा सीधा सीधा तो बोल दिया तो फिर अपन कहेंगे कि हमने तो दूसरे की रक्षा के लिए झूठी बोली थी जानबूझ करके, या अपनी आत्मरक्षा के लिए झूठी बोली थी, तो ऐसा नहीं चलेगा। इसमें हम जान रहे हैं कि हमारे वचन बोलने से विपत्ति आएगी तो हम कुछ नहीं बोलें, चुप रह जाएं, ये उसका सलूशन है। झूठ तो बोलना नहीं है और सच बोलने में विपत्ति जान पड़ती है, तो सबसे अच्छा है कि कुछ नहीं कहें। उस समय मन में आ सकता, दूसरा भी कह सकता कि आप तो सच्चाई जानते हो, आपको बोलना चाहिए नहीं, लेकिन जो सच्चाई है वो दूसरे को घात करने वाली है, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा। ये व्रती व्यक्ति सत्य धर्म का पालन करने वाले के लिए है, और सामान्य से तो अपन तो रास्ते ही देखे रहे कि कोई को तकलीफ पहुंचा पे खिलाने, सच्ची बात तो कह सबके सामने कह दें हम, ऐसा है। तो ये क्रोध लोभ भीरुत्व और हास्य, इन चार कषायों से प्रेरित होकर के जो वचन कहे जाते वो सब दोषयुक्त हैं, झूठ हैं। यहां कह रहे कि कठिन वचन मत बोल, पर निंदा और झूठ कर। और कहते साथ जवाहर खोल, जवाहर का मतलब क्या है, जेम स्टोन, जो हीरे जवाहरात होते हैं, रत्न होते। तो कहते सांच तो कैसा है, हीरे के समान, रत्नों के समान कीमती है, इसलिए सत्रूपी रत्न का उपयोग करो। सतवादी जग में सुखी, क्योंकि जो सच बोलते हैं वे ही सुखी रहते हैं, उनको कोई भय नहीं रहता। हमने जो कहा सो सच कहा है, अब आप हमसे चाहे जब कहलवा लो, नहीं तो बार बार जो है बदलते हैं फिर अपन, या कि भयभीत बने रहते कि भाई हमारी बात कोई को सच्ची मालूम ना पड़ जाए, हमने तो झूठ बोल दिया था। उसमें लिखते हैं कि झूठी और हंसी और बंदर ये छुपते नहीं पुआर में, बंदर घास में छिप जावे पकड़ में आज हिल है तो ही, वो तो सीधो बैठ ही नहीं सकता, बंदर की तो आदत रहती। तो कहती बंदर को पुआर में छुप रहा है, वो कहती नहीं छुपेगा, हंसी तुम कितने ही मुंह बंद कर लो, वो तो चेहरे से प्रकट हो जाएगी कि आप प्रसन्न हो, हंस रहे हो हैं। ऐसे जो है ये ऐसे ही झूठ जो है वो छिपती नहीं है, कह रहे हैं वो तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी प्रकट हो ही जाती है। इसलिए जिसको सुखी रहना है वो सच का आलंबन लेवे, वो सच ही वचन बोले। उत्तम सत्य व्रत पा लीजिए, उत्तम सत्य धर्म का पालन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसमें हम पहले भी समझते थे, आप लोग ने समझते होंगे, पहले हम समझते थे कि उत्तम सत्य धर्म पा लीजिए, लेकिन पर मतलब लेकिन, यहां पर का मतलब लेकिन नहीं है, पर मतलब दूसरा, पर विश्वासघात अर्थात दूसरे के विश्वास का घात नहीं करना, क्योंकि झूठ वचन बोलने वाले की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है। झूठ वचन बोलने वाला दूसरे को धोखा भी देता है और स्वयं भी अपने ऊपर दूसरे का जो विश्वास है उसका घात करता है। तो कह रहे दूसरे के विश्वास का घात न करना, वो तो आप खो सच्चा समझ रहा था और आप जो है उससे आपने और ऐसा व्यवहार किया, उसके विश्वास को ठेस पहुंचाने वाला व्यवहार किया, झूठ बोल दिया आपने। तो कह रहे उत्तम सत्य व्रत का पालन करने वाला कभी भी दूसरे के साथ विश्वासघात ना करे। साचे झूठे मानस देखो, देखो इस संसार में सच बोलने वाले भी और झूठ बोलने वाले दोनों दिखाई पड़ते हैं। आपन पूत स्वपास न देखो, और देखो अपना भी पुत्र क्यों ना हो, और अगर झूठा हो तो पिता उसका साथ नहीं चाहते हैं, उसको अपने पास बिठाना के लिए ना अपनी संपत्ति देते हैं ना उसको उसके पास रहना पसंद करते हैं। आपन पूत स्वपास न पे, एक अर्थ तो ये निकल गया कि सत्य सांचे झूठे मनुष्य यहां पर देखने में आते हैं, और यहां तक देखने में आता है कि दूसरा कोई झूठा हो तो ठीक ही है, अपना पुत्र अगर झूठा हो झूठ बोलता हो तो उसे भी हम अपने पास नहीं रखना चाहते हैं, और अन्य झूठे व्यक्तियों पर तो और कौन विश्वास करेगा, अपने पुत्र से ही विश्वास उठ जाता है अगर वो झूठ बोलता है। एक अर्थ ये है, दूसरा अर्थ और निकलता है इसका, वो निकाला गया है, ऐसे चाहे तो निकाल सकते कि संसार में सांचे झूठे मनुष्य कहाँ तक देखोगे, सांचे झूठे मनुष्य सब दिखाई पड़ते हैं। आप तो आपन पूत स्वपास न देखो, अपने आत्मा के पवित्र स्वभाव की तरफ आज तक आपने नहीं देखो, सो उस तरफ देखो। आपन पूत अपनी पवित्र आत्मा स्व अपनी पवित्र आत्मा को निकटता से देखो तो उसमें सांच और झूठ में फिर हमें राग द्वेष नहीं होगा। एक अर्थ ये भी है, लेकिन ये थोड़ा जरा ऊंचा अर्थ है ना, अपन तो सीधा ही सीधा ले लो कि सांचे झूठे दोनों प्रकार के मनुष्य देखने में आते भैया, और कोई अपना सगा भी हो, अपना सगा पुत्र भी हो, तब भी अपन अगर वो झूठा व्यवहार करता है तो उसको अपनी संपत्ति नहीं देते, उस पर अपन विश्वास नहीं करते। तो अब जब अपन दूसरे की झूठा होना पसंद नहीं करते और अपन ही झूठे हो जावे तो कोई अपन को पसंद करेगा, कितने करेंगे, सीधी सीधी सी हिसाब है। पेखो तिहायत पुरुष सांचे को दरब सब दीजिए, पेखो अर्थात इस संसार में समझो देखो है, तिहायत अर्थात नितान निस्वार्थ जो पुरुष है और सत्यवादी है, निस्वार्थ सत्य बोलने वाला बहुत दुर्लभ है। सत्य बोलते हैं अपन किसी न किसी स्वार्थ की वजह से भी, वैसे वाले सत्य को भी यहां उत्तम सत्य नहीं कहा, कह रहे कि तिहायत अर्थात निस्वार्थ नितांत जो सत्य बोलने वाला है, निस्वार्थ सत्य बोलने वाला है, उसी के लिए लोग विश्वास करके अपना सर्वस्व देने तैयार हो जाते हैं। ये अपन के जीवन में अपन रोज देखने में आता है, इसलिए सत्य ही हमें संसार में विश्वास दिलाने वाला और विश्वसनीयता को बनाए रखने वाला है। एक हम उदाहरण देते हमेशा इसका, कश्मीर गए थे जैनेन्द्र कुमार, उनने अपना संस्मरण लिखा, जैनेन्द्र कुमार ने भूल गए, वो अज्ञे का है सच्चिदानंद वासन, अज्ञे गए कश्मीर, तो वहाँ पर कश्मीर की यात्रा में उनके एक मित्र मिल गए। ये कब की बात है, सन 36-35 के लगभग, बहुत पुरानी। तो उनने लिखा अपने संस्मरण में कि हम वहाँ पर हमारे एक मित्र मिल गए, तो उन्होंने 3,000 रुपये दे दिए कि आगे आप जा ही रहे हो वहाँ फलाने को दे देना। अब 3000 रुपये सन 36 में आज के 3 लाख का 30 लाख से ज्यादा हो जाएंगे। उस समय 3000 की बहुत वैल्यू थी, और न कोई लिखा पड़ी, न अंगूठा लगवाओ, न दस्तखत करवाए, कुछ भी नहीं, दे दिए, आप दे देना वहां पर। किस दिए? दे दिए विश्वास से, दे दिए। अब जे चले चले, बस में बैठे नहीं हैं और बस चलने चलने वाली है, उतने में एक 11 साल का लड़का आगे कहता है कि भी 3000 रुपये दे दो, मालिक मंगा रहे हैं, अब नहीं देना वहां आगे। स्वयं ने 3000 रुपये निकाली और दे दिए और के जा। अरे भाई, जितने इनके मित्र थे केले डूब गए भी पानी में, 3000 ने पूछी ने ताची के कहां से आओ, कहा नाम है, अब गए भी 3000। तो मालूम इनने क्या जवाब दिया कि 3000 रुपये चले जाएं तो चले जाएं, मैं एक एक पाई जोड़ करके 3000 चुकता कर दूंगा, लेकिन एक बार दूसरे पर अविश्वास करना सीख लूंगा तो जीवन भर पर विश्वास नहीं करता। इसलिए मैं तो सो है, विश्वास से जीवन चलता है, विश्वास करके उनने हमें 3000 दे दिए, हमने उसको विश्वास करके उसको दे दिए, इसी तरह जीवन चलता। आज नहीं करी हो सो, नहीं तो जी पुरानी बातें, हमने इसे पहले कह दी कि जी पुरानी बातें हैं, अब तो जी लग गए दिन, कितना विश्वास था। हम तो कहना ये चाह रहे कि कितना परस्पर, आज अपन को अपने सगे व्यक्ति पर विश्वास नहीं, और सबसे ज्यादा धोखा अपन जिसको अपना सगा समझते उसी से होता। एक किसी ने लिखा कि देखो तो संसार कैसा मोही है कि जिसको अपना सगा मानता है वही सगा भाई अपने पिता की धन संपत्ति और घर परिवार को हिस्सा करवा देता, और हम कहते सगा है, तो जी कैसा सगा है जो हिस्सा करवा देता। हाँ, ऐसा प्रश्न उठाया उन्होंने। अब जवाब दो इसका, आप तो कह रहे कि हमारा सगा भाई है, अभी तक पिता की संपत्ति दो ही की हती, लेकिन अब तनक बड़े हो गए, समझदार हो गए, सो बटवा दई, तो जी काय के सगे, संपत्ति बटवाने वाला सगा कहलाएगा कि शत्रु कहलाएगा। लेकिन लोक व्यवहार में इसी को ठीक मानते हैं, अब संसार इसी का नाम संसार है, उसको अपन सगा कह रहे हैं। ऐसे यहां पर है कि अपन जो है आज वर्तमान में बहुत विश्वास से जो जीवन चलना चाहिए वो आज विश्वास नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि हमारा जीवन सच्चाई पर नहीं टिका है, जीवन तो हमने झूठ पर टिका करके रखा हुआ है। तो कहते जो निस्वार्थ सत्य बोलने वाला है, अपना मन उसी को अपना सब द्रव्य सर्वस्व देने का होता है, झूठे व्यक्ति को कोई अपनी धन संपदा क्यों सौंपेगा। मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा सांच गुण लख लीजिए। अगर आपको दोनों की प्रतिष्ठा देखनी है, मुनि महाराज की और श्रावक की, तो दोनों ही प्रतिष्ठा पाते हैं, काय की वजह से पाते हैं, कहते सांच गुण, उनके भीतर जो सच्चाई है उसी को देख करके आप उनकी प्रतिष्ठा का आकलन कर सकते हैं। या दूसरा अर्थ है, कहते मुनि महाराज की प्रतिष्ठा उनके सांच गुण की वजह से है, सच्चाई की वजह से है, सत्य धर्म का पालन करते, और श्रावक भी जो है अनुव्रति है वो भी सत्य का पालन करता है, इसलिए अपन उनको सम्मान देते हैं कि भाई आपने 10 माने धर्म का पालन कर रहे हैं आप, इसलिए। और फिर कह रहे कि ऊंचे सिंहासन बैठ बसु ड्रप, ड्रप का मतलब राजा, तो जो बसु नाम का राजा था वो बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठता था। उसका सिंहासन काय का बना था? स्फटिक का बना था। स्फटिक मणि जो है वो ट्रांसपेरेंट होती है, उसके पिलर बने हुए थे सिंहासन, और पूरा का पूरा सिंहासन उसी से बना था, तो ऐसा दिखाई पड़ता था कि राजा तो ऊंचाई पर अधर में बैठा हुआ है, क्योंकि सिंहासन तो ट्रांसपेरेंट, वो तो दिखता ही नहीं था, उस पर बैठा हुआ राजा दिखाई पड़ता था, तो लोग सोचते थे कि सत्यवादी है वसु राजा, इसलिए देवों ने उसके लिए सिंहासन कहां ऊंचाई पर रस दिया है, वो सिंहासन उसका स्फटिक का था। पुराण पढ़ो तो उसमें ये मिल जाता है कि ठीक मैंने था भी स्फटिक का होने की वजह से, और वो सत्यवादी था। अब लेकिन उसके साथ क्या हुआ, धर्म के मार्ग तक जल तक जब तक चलता रहा, धर्म का भूपति भया, धर्म के मार्ग पर चलते हुए वो सब में, और उसकी वाहवाही होती थी कि भाई हमने राजा ऐसा नहीं देखा, इतना सत्यवादी, लेकिन वच झूठ से थी, जरा सा झूठ वचन का समर्थन करने मात्र से नरक पहुंचा। वो इतना सत्यवादी जीवन भर सच्चाई पे चलता रहा, और एक जो है अपने मोह वश, घटना सबको मालूम, नारद और पर्वत जी दोनों एक गुरुजी के पास पढ़ा करते थे हैं? तो अब जी जब गुरुजी के पास से पढ़ करके लौटे गुरुजी ने, तो इनको अज, अज एक शब्द है संस्कृत का, तो अज का अर्थ होता है साली धान जो 3 साल पुराने हो, हवन करना चाहिए, ऐसे साली धान जो पुराने धान हो उनसे उनको हवन में डालना चाहिए, और दूसरा अर्थ अज का बकरा भी होता है। तो गुरुजी ने बताया था कि देखो अज का अर्थ बकरा नहीं लेना जब हवन का प्रकरण हो, अज का अर्थ तो साली पुराने धान है, लेकिन पर्वत जो है वो अड़ गया। जब गुरुजी के पास से दोनों आए तो एक दिन दोनों में जो वहां पर हो रहे थे यज्ञ वगैरह, तो प्रचार करना शुरू कर दिया पर्वत ने कि अरे आज का अर्थ बकरा होता है इसलिए तुम यज्ञ में उसको भी डाल सकते हो, ऐसा कह दिया। तो नारद ने कहा कि ये तो ठीक नहीं है, तुम जो है गुरुजी के विरुद्ध काम कर रहे हो। तो अब बहुत बात बढ़ गई, तो कौन निर्णय करे, कहते चलो राजा के पास, क्योंकि राजा भी उनके गुरुजी के शिष्य रहे पहले बसु राजा, तो चलो अपन वहीं चलते हैं। गए वहां पर, अब निर्णय तो दूसरे दिन पे स्थगित हो गया, दोनों की बात सुन ली। अब इतने में जो है पर्वत की माँ हैं राजा के पास में आई और उनसे कहा कि आप जो है वो पर्वत जो है उनको गुरुवाणी बोलता था, और राजा भी उनको गुरुवाणी बोलते थे तो सम्मान करते थे। तो उनने कहा कि पर्वत मेरा बेटा है, आप तो जैसा मेरा बेटा कहे उसका समर्थन कर देना, ये हम आपसे निवेदन करते हैं। बस बसु राजा ने दूसरे दिन इतना ही तो कहा कि जो पर्वत कह रहा है वही सच है। इतना कहते ही अब कर्म का उदय कहो, संयोग कहो, झूठ वचन का प्रभाव कहो, वो सिंहासन टूट गया है। अपन सीधी कहो कि पुराना होगा सो तो टूट गया है कि नहीं, नहीं पुराना होगा सो तो टूट ही गया, लेकिन उसमें कारण बन गया कि उसने झूठ वचन बोला जिससे वो सिंहासन टूट गया, तो राजा उसी क्षण भूमि पर गिर गया। राजा का भूमि पर गिरना अर्थात उसका अपमान हो गया है? 4 लोगों के बीच में, और सबने कहा कि अरे सबने यही कहा कि राजा ने ये कैसा किया, और फिर राजा उसी अपने संक्लेश परिणाम से, अब जब संक्लेश परिणाम से प्राणांत होगा, सारी सभा धिक्कार कर रही, सारी प्रजा धिक्कार कर रही, राजा ने ऐसा कैसा बोल दिया कि पर्वत कह रहा है सो सच है, ऐसा तो नहीं है, उसका तो अर्थ साली धान ही होता है, नारद ठीक कह रहा है। नारद अपनी बात पर अडिग रहा, पर बसु राजा इस झूठ वचन के द्वारा नरक गया, उस सुरंग में नारद गया। नारद ने तो हिंसा का समर्थन न करके अहिंसा का समर्थन किया, इसलिए वो स्वर्ग में गया। सत्य वचन बोलने से इस तरह हम अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं, ये इसका आशय है। झूठ वचन से बचना चाहिए। प्रश्न है, अच्छी बात, आज घड़ी तो है ही नहीं है क्या? जब बीतराग भगवान के श्रीफल नहीं चढ़ाया जाता, अरे बीतराग भगवान के श्रीफल नहीं चढ़ाया जाता, बहुत सी नई नई बातें हैं लोगों की। अच्छा है भैया, संसार इसी का नाम है, है? तो निर्ग्रंथ गुरुओं के क्यों चढ़ाया जाता है? भैया ने चढ़ाओ, लड़ो ने, लेकिन तुम और कछु चढ़ाओ, जो तुम्हें चढ़ाना वो चढ़ाओ, तुम सेव फल चढ़ाओ, हमें क्या उसमें दिक्कत, श्रीफल में चढ़ाओ, या कि ऐसे ही चढ़े जाओ 3 लोक के नाथ के चरणों में। अरे अपनी बेटी का जिसके घर में ब्याह कर देते हैं, जब उसके घर में पिता जाते तो अपनी बेटी का कैसे खा ले, में तो भोजन करके और थाली के नीचे रुपया धरे आओ, कभी गरीब आदमी है का जो उनको पैसा दे रहे, तो नहीं, हम किसी बड़े व्यक्ति के यहाँ जाएंगे जिसको हमने अपनी बेटी दी वो हमसे बड़ा है ऐसा विचार करके, और हम उसके यहाँ कुछ नहीं लेते बल्कि उसी को भेंट स्वरूप देते हैं। जब लोक व्यवहार में इतना विवेक रखते हैं तो जे तो तीन लोक के नाथ हैं, क्या खाली हाथ और खाली हृदय चले जावे? अरे भाई, हाथ भरे होंगे और हृदय जो है श्रद्धा से भरा होगा तीन लोक के नाथ के चरणों में। इसलिए ये बात तो कहीं से कहीं अपन के समझ में नहीं आई कि वीतरागी भगवान को श्रीफल नहीं चढ़ाया जाता, वीतरागी भगवान को नहीं जाने श्रीफल जा तो ठीक है, मगर हमें अपने राग को कम करने के लिए, अपने मोह को कम करने के लिए, अपनी मूर्छा के कम करने के लिए वीतराग भगवान के सामने कोई ना कोई द्रव्य जो है अष्ट द्रव्यों में जो श्रेष्ठ है वो चढ़ाना चाहिए, श्रीफल को श्रेष्ठ माना। श्रीफल इसलिए कहते हैं उसको, आचार्य श्री कहते कि देखो उसके जटाजूट बाहर से कठोर भी है और बड़ा उलझा हुआ मालूम पड़ता है, लेकिन भीतर से देखो कैसा मुलायम है। तो कहते बाहर में अपनी तपस्या में ऐसे ही कठोर रहना, लेकिन भीतर से हृदय तो मुलायम रखना, एक चीज। दूसरी चीज, जितना पानी वो भूमि से ग्रहण करता है अपने बढ़ने के लिए सब अपने भीतर संचित करके ले रख लेता और लौटा देता है। तो कृतम उपकारम न विस्मरंती साधवा नारिकेलवत, ऐसा नीति का वाक्य है कि अपने ऊपर किए हुए उपकार को जैसे सज्जन पुरुष नहीं भूलते हैं, ठीक ऐसे ही जैसे कि नारियल श्रीफल। इसलिए श्रीफल को श्रेष्ठ माना। और सबसे सेफ साइड है, कितने ही दिन चढ़ो रहे, अब अगर केला चढ़ाओ है तो संध्या तक उठा लो न सड़ जाए, सेब फल चढ़ाओ है तो एक दो दिन के बाद सड़ जाएगा हैं, और श्रीफल चढ़ो है तो चढ़ा रहे, चढ़ा ही रहेगा, उतरेगा नहीं। हाँ, इसलिए हमने श्रीफल चढ़ा करके और कामना करते हैं किसी तरह जो है हमारा जीवन भी। आचार्य श्री तो कहते उसमें तीन आंखें होती हैं श्रीफल में, विरत्नत्रय की प्रतीक है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से ही मोक्ष होगा, इसलिए जो है श्रीफल इस बात का भी प्रतीक है। इस तरह से लिखा हुआ है, भगवान को कोई चीज नहीं चाहिए, वे वीतरागी हैं, लेकिन हमें अपना राग कम करने के लिए कुछ ना कुछ त्याग करना चाहिए, इसलिए श्रीफल चढ़ाते हैं, वीतरागी भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं और पंच परमेश्वरी के भी चढ़ाते हैं। सो तो जब दमान जी घर में आते तो उनको भी श्रीफल भेंट करते नहीं करते। अब बताओ आप, थोड़े बहुत सफेद स्पॉट्स हो जाएं शरीर में तो वो पूजन प्रक्षाल गुरु को आहार करवा सकता कि नहीं करवा सकता? करवा तो सब सकता है, कर नहीं सकता। आया समझ में? आप लिख रहे हैं कि करवा सकता कि नहीं, करवावे में क्या दिक्कत? भैया पूजा करो, हम खड़े हम देख रहे, काहे हमारी तो शरीर की स्थिति नहीं है, आप करो तो करवा सकता है पूजा। और आहार में ऐसे ही लोगों के लिए है अनुमोदना और कारित, अच्छे खासे चंगे फंगे लोगों के लिए नहीं है खड़े होके देखने की प्रक्रिया, वो मैं कच्छू नहीं मिले वालों। हाँ, जो दे नहीं सकते, जैसे आज हम देख रहे थे सूतक लगी है तो अब का जरूरत महाराज के पास जावे की? नहीं, सूतक लगी हम दे नहीं सकते, पर देखेंगे पूरा लाभ होगा, पूरा 100%। और जिनको नहीं लगी और वे भी नहीं दे रहे तो उनके तो उनको कुछ नहीं लगेगा लाभ, ये ध्यान रखना। जो दे सकता था उसने नहीं दिया उसको एक रत्ती नहीं लगेगा, और जो दे नहीं सकता था फिर भी देने का भाव है उसको पूरा था। इसलिए अपने यहां पर, और अगर ऐसी कोई शारीरिक व्याधि हो जाती है तभी के लिए तो रखा है कि अपन कर, अपना शरीर करने योग नहीं रहा तो दूसरे को प्रेरणा दो, भैया हम तो नहीं कर सकते आप करो, या कि अब प्रेरणा भी नहीं दे सकत को अपनी नहीं सुन रहा तो फिर जो कर रहा है उसका समर्थन करो, तो भैया बहुत अच्छा आप पूजा करते, बहुत अच्छा, हमारा तो कौन सा पाप का उदय आ गया कि हमारे शरीर में इस तरह की व्याधि हो गई। ऐसी अपनी मन ही मन निंदा करना, जिससे कर्म कटेंगे, क्यों नहीं कर सकते हम, ऐसा अहंकार मत करना। हाँ, एक जनवरी की घटना है, सन 1995, गुना का चतुर्मास करके हम कहाँ पर पहुँच के, पास में बजरंगगढ़ है वहाँ पर, 1 जनवरी को सब बच्चों ने प्लान कर लिया, अपन ही अपन पड़गाएंगे महाराज को, आ भी जाएंगे महाराज, बेजान गए स्वभाव, उन्होंने कहा आ जाएंगे, वो तो अपन इकट्ठे खड़े हो जाएंगे। तो सब ने 50-55 बच्चे, सब जितने चौकी लगे थे सो अलग अलग खड़े होंगे, तो किसी एक के यहाँ जाएंगे, उनने प्लान कर लिया कि अपन सब आ जाओ और एक जगह खड़े हो जाओ। अब चौकाओं का कुछ नहीं था उनका भी, तो सब जितनी चौका लगी थी उनके सब बच्चों ने प्लान कर लिया, सब खड़े हो गए, हम भी जाके उनके पास खड़े हो गए। अब उनमें चर्चा शुरू हुई, कौन के ले चलने भूलो, बड़ा मजा, बहुत मजा दी गई थी, किसके यहाँ ले चले अब, सबके बच्चे थे, लोग भी खुश थे कि सब अपने बच्चे हैं, सब उसमें शामिल हैं। अब फिर उनने अपने आप प्लान कर लिया, हम तो पीछे पीछे चले जा रहे हैं, उनने प्लान कर लिया, उनके यहाँ पर, उनके यहाँ कल हुआ था, उनके यहाँ पर अभी 2 दिन, और फिर उनका चौका भी छोटा है नहीं, वो बड़े वाले, उनने अपना प्लान करके हॉल में, और फिर बढ़िया से। उसी दौरान एक गुड़िया बाहर खड़ी हुई और उसके आंसू आ रहे, चुपचाप पहुंच रही है। मुझे लगा कि इसको 16 के कपड़े नहीं मिल पाए, अब यहां सब बच्चों ने पहन लिया, अब इतने 40-50 तो पहन लिए, अब कहां से आएंगे, इसलिए रो रही है। अब जो है वापस लौट करके आए, तब मैंने पूछा कि बेटे आप रो रहे थे, बोलते हाँ। हमने कहा क्यों, बोले हमें इस बात का दुख था कि हम आपके धर्म में पैदा नहीं हुए, नहीं तो हमें भी अपने मित्रों के साथ आज आहार देने मिलता, हम तो अभी इस लायक हैं ही नहीं कि आपको हम आहार दे सकें, हमारे घर में तो सब प्रकार की चीज़ें खाई जाती हैं और हम उस घर में उत्पन्न हुए हैं और हम आपके जैसे इसमें उत्पन्न होते, इस पे रो रहे, ये क्वेश्चन नहीं कर रहे कि हम क्यों नहीं दे सकते, आप तो सबके सद्भाव की बात करते हो और आपका इतना ही सद्भाव नहीं है तो चाहे जो उनसे ले लो, नहीं, वो स्वयं ये ना कह करके ये अपनी गलती महसूस कर रही थी कि मैं उस योग्य नहीं, ऐसे व्यक्ति के पूरा लाभ मिलेगा आहार दान का और उसको भोग भूमि के बंध का पूरा उपाय है, सम्यक दृष्टि तो आहार दान देवे तो कहां जाएगा, स्वर्ग जाएगा और कहीं नहीं जा सकता, और अगर मिथ्यात्व होवे और फिर आहार दान है मिथ्यात्व के साथ में तो भोग भूमि जाएगा मनुष्यायु का बंध करके, सम्यक दृष्टि को तो एकमात्र देवायु का ही, ऐसी अपने यहां पर इसकी महिमा है। इसलिए कारित और अनुमोदना दोनों भी जो है की जा सकती, भैया वेदी पर विराजमान प्रतिमाओं की गणना में सिद्ध भगवान की प्रतिमा की गणना की जावे कि नहीं की जावे, ये प्रतिष्ठाचारियों के जिम्मे की बात है, इसमें अपना कोई दखल नहीं है, हम नहीं जानते 24 के मध्य में किस भगवान की प्रतिमा होनी चाहिए, 24 ही भगवान एक जैसे हैं, और कोई को बीच में रख दो तो दूसरे बुरा ही नहीं मानत, इसलिए किसी की भी रख दो कोई हर्जा नहीं। ये दो प्रश्न ऐसे ही हमने सामान्य रूप से जवाब दे दिए। महाराज आपने बताया कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध 8वें गुण स्थान के पहले समय में होता, भैया 8वें गुण स्थान के पहले समय तक होता है, निष्ठापन की अपेक्षा से प्रतिष्ठापन तो 6ठे 7वें गुण स्थान में होता है, और गिर करके 4थे गुण स्थान में आ जावे तब भी कर्म का बंध हो जाए। अब इतनी बारीक चर्चा हम प्रवचन में करें तो हो जाए, फिर सब जने उठ उठ के चले जाए, हमें वहां सामान्य रूप से कहना पड़ता, फिर भी हमने ऐसा कह दिया था कि 4थे गुण स्थान से 8वें गुण स्थान के पहले समय तक ये तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता। अब लेकिन उसकी व्यवस्था कैसी है, ये व्यवस्था बिल्कुल जुदी समझना पड़ेगी। 8वें गुण स्थान फिर श्रेण राजा श्रेणिक श्री कृष्णादि बिना तीर्थंक बिना मुनि तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे कर लिया, तो 4थे गुण स्थान में भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, 4थे गुण स्थान से लेकर के 8वें के पहले समय तक श्रावक भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर देता है, मुनि महाराज भी करते, मुनि महाराज तो विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर प्रकृति का बंध मुनि बन के करें और उसी जीवन में तीर्थंकर प्रकृति उदय में आ जाए तो 2 कल्याणक वाले तीर्थंकर हो जाते हैं, ज्ञान कल्याणक और उनके मोक्ष कल्याणक, और अगर गृहस्थी में तीर्थंकर प्रकृति बांध लेवे और उसी जीवन में उदय में, क्यों उनका वही जीवन शेष रहा तो उसी जीवन में उदय में आ गई तो उनका दीक्षा कल्याणक मनाया गया, केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक 3 कल्याणक वाले, लेकिन भरत क्षेत्र में तो 5 ही कल्याणक वाले होंगे, तो पूर्व जीवन में जिन्होंने चाहे मुनि बन करके या कि सम्यक दर्शन के साथ, कंडीशन वहां पर है चौथा गुण स्थान अर्थात सम्यक दर्शन, अब अवरेज सम्यक दर्शन है, सरास सम्यक दर्शन है या कि वीतराग है, दोनों स्थितियों में तो आपने पूरी बात नहीं समझी, इसलिए आप कंफ्यूज हो गए। बात तो सीधी है, तंदुल मत्स्य सातवें नरक में कैसे जाता है, कैसे जाता है? अब आपको दिखा थोड़ी सका था हम कि जी चला गया वहां पर, एकदम रास्ता है उसका वहां जाने का, इसलिए चला जाता है, वो उस रास्ते से जाता है। अच्छी बात है, हमारी समझ में तो ये था, अब इनकी समझ में अपन देख लें, हमारी समझ में तो ये था कि सातवां नरक तो आदमी जा सकता है, लिखा भी है कि मनुष्य ही सातवें नरक जा सकता है, स्त्रियां भी नहीं जा सकती। बात तो सही है आपकी, लेकिन वज्रवृषभ नाराज सहनन वाला जाएगा, वो वज्रवृषभ नाराज सहनन संगी पंचेंद्री तंदुल मत वो महामत्स्य के भी होता है, इसलिए त्रियंचों में जो वज्रवृषभ नाराज सहनन वाला महामत्स्य है वह भी सातवें नरक की आयु का बंद कर लेता है। मनुष्य में सभी मनुष्य नहीं कर सकते, वज्रवृषभ नाराज सहनन का धारी मनुष्य ही, और अगर ध्यान करे तो शुक्ल ध्यान के द्वारा उसी भाव से मोक्ष हो सकता, और अगर चूक जावे और अपद ध्यान कर लेवे तो सातवें नरक जा सकता। जो आपने स्त्री के बारे में कहा सो उतनी सामर्थ्य ही नहीं होती भीषण पाप करने की, छठे नरक से नीचे नहीं जा सकते, पाप करने के लिए भी ताकत चाहिए बाबा, जैसे कि मोक्ष जाने के लिए बहुत सामर्थ्य चाहिए वैसे ही जो है, तो इतना भी